हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विहा को ऐसे रोता देखकर वेदांत को खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने एक सांस में नींबू पानी पिया और फिर उन दोनों के पास जाते हुए धीरे से बोला, आई एम रियली सॉरी टोमेटो, अगर मैंने रात को तुम्हें ज्यादा परेशान किया हो मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ड्रिंक करके घर नहीं आऊँगा, आई प्रॉमिस, प्लीज लुक एट मी। वेदांत ने बहुत कोशिश की विहा को मनाने की, पर विहा ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो वैसे ही अनाही के गले लगे रोती रही। अनाही ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, इसे मैं संभाल लूंगी। ना चाहते हुए भी वेदांत को वहां से जाना पड़ा। वो तेज कदमों से बाथरूम में गया। बाथरूम के अंदर जाकर वो कोल्ड शावर चलाकर उसके नीचे भीग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके दिमाग में बस विहा का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। मुझे नहीं रहना यहाँ दी, मुझे डर लग रहा है। विहा की मासूम सी कांपती आवाज बार बार वेदांत के कानों में गूंजकर उसे उसकी रात वाली गलती याद दिला रही थी। वेदांत ने परेशान होकर अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए सामने वॉल पर मारकर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द शिट आई डू। वहीं बाहर अनाही अब विहा को बेड पर बैठाकर उसके हाथ में कॉफी का मग देते हुए बोली, ये कॉफी पी लो और अपना दिमाग थोड़ा शांत करो, उसके बाद सोचना कि वेदांत जी ने क्या रात में सच में तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी। और रही बात ड्रिंक करने की, तो वो कल रात वापस ही नहीं आने वाले थे, पर मुझे वहां का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहां सिर्फ आदमी ही आदमी थे, इसलिए मैंने जिद की कि मुझे घर जाना है और इसीलिए उनको हर हाल में मेरे साथ आना पड़ा। विहा ने कुछ सोचते हुए धीरे से हाँ में सर हिलाया और अनाही वहां से जाने लगी तो विहा तुरंत ही बेड से उठते हुए बोली, आप मत जाइए ना मुझे अकेला छोड़कर। अनाही ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अरे तुम्हारे पति हैं वो, इतना क्यों घबरा रही हो, एक ना एक दिन तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है, मैं कब तक तुम्हारे पास रह पाऊंगी बेटा। कहीं ना कहीं अनाही की बात विहा को भी समझ आ रही थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैंने अपना सामान पैक कर लेती हूँ, मुझे आज घर जाना है, कुछ दिन वहाँ मम्मी के पास रहकर आऊंगी तो शायद मेरा दिमाग शांत हो जाए, प्लीज आप सासू माँ से बात कर लेना। अनाही ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है मैं अभी मम्मी जी से बात करती हूँ, तुम परेशान मत हो। विहा ने जल्दी जल्दी वो गरम कॉफी खत्म की और अनाही के साथ ही कमरे से बाहर जाते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अनाही ने अफसोस में ना में गर्दन हिलाई और फिर विहा के साथ ही निवेदिता के कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ माधवी अपने कमरे में गुस्से से हूम रही थी और फोन पर किसी से चिल्लाते हुए बोल रही थी, मैंने तुमसे कहा था वेदांत उस होटल रूम से बाहर नहीं आना चाहिए, फिर तुम लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, मैंने कहा था अनाही को भी ड्रिंक करवाना है। सामने से किसी लड़के ने डरते हुए कहा, हमें माफ़ करना पर वो मैडम बहुत ज़िद्दी थीं, उन्होंने हमारे हजार बार बोलने पर भी वहाँ का पानी तक नहीं पिया, जूस पीना तो बहुत दूर की बात है। माधवी ने गुस्से से पे अपने जबरे कस लिए, शायद अनाही को वो जितना मासूम और सुलझा हुआ समझ रही थी वो इतनी भी मासूम नहीं थी। माधवी ने कॉल कट किया और फिर फोन बेड पर फेंकते हुए गुस्से से बोली थी, ये लड़की दिन ब दिन मेरे सर पर चढ़ती ही जा रही है, मैंने सोचा था बहुत ही संस्कारी लड़की है, ऑफिस के काम के साथ बच्चों का टिफिन बनाती है, सबका इतना ख्याल रखती है, उसका पति लेट आता है तो उसके लिए रात तक जागती है, इसका मतलब है अपनी जेठ की शान रखने के लिए एक ड्रिंक तो कर ही लेगी, पर नहीं, ये तो एक्स्ट्रा चालाक निकली, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ठीक उसी वक्त राधिका तेज कदमों से अंदर आई। उसे देखकर माधवी ने अफसोस से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, एक ये मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती रहती है, मुझे लगा था मेरी हेल्प करेगी। राधिका खुश होते हुए अंदर आकर बोली, जी जी आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ, सुनकर आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। राधिका की ये बात सुनकर माधवी ने गहरी सांस ली और फिर सोफे पर बैठते हुए अपना सर पकड़कर बोली, तू भी बोल दे, मेरे पास सुबह से बैड न्यूज ही आ रही है, अब तो गुड न्यूज बता दे मुझे। राधिका तुरंत ही उसके बगल में बैठते हुए बोली, आज दोनों बहनें सुबह सुबह वेदांत के कमरे से निकलकर निवेदिता के कमरे में गई हैं और विहा तो रो भी रही थी, लगता है वेदांत और विहा की जबरदस्त वाली लड़ाई हो गई है। माधवी जो आराम से बैठी थी वो तुरंत ही चौंक कर राधिका की तरफ देखते हुए बोली, तू सच बोल रही है ना, चलो अच्छा है, कम से कम उन दोनों के बीच तो लड़ाई हुई, अब मुझे रूहान से बात करनी है, लगता है कई दिनों से वो अपनी दवाइयाँ नहीं ले रहा है, मैंने तो उसे कहा था कि वो दवाइयाँ रोज लेनी है। उसके बाद राधिका सोफे पर पीछे अपना सर टेकते हुए बोली, कांड हमारे दोनों पतियों ने किया है और अब इसका सल्यूशन हम दोनों ढूंढ रहे हैं। पिछले कितने सालों से आप तो जैसे अपनी जिंदगी जीना भूल ही गई हैं जीजी। मैं तो सच कह रही हूँ, मुझसे तो ये अब और होता नहीं है। कब तक हम निवेदिता और रुहान की लड़ाइयाँ करवाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो दोनों माँ बेटे एक साथ हो ही जाएंगे और उसके बाद हमारा जो होगा वो सोच के ही मेरा तो दिल घबराता है। मुझे इस उम्र में पुलिस स्टेशन जाकर चक्कियाँ नहीं पिसनी है। माधवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू ये सोचना, जिस दिन रुहान हमें वो राज बताएगा उस दिन हम कितने अमीर हो जाएंगे। ये मान ले आधी दुनिया हमारे कदमों में आ जाएगी। तू हमेशा गलत गलत ही सोचती है, इसीलिए तेरी जिंदगी में गलत होता भी है। मैं तो हमेशा अपना फ्यूचर देखती हूँ, कितना रईसों वाला होगा। राधिका ने कुछ सोचते हुए कहा, वो तो अभी भी है, वेदांत की वजह से पूरा गुजरात जानता है हमको। माधवी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, छोटे लोगों की सोच भी छोटी होती है। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि गुजरात या इंडिया ही हमको जाने, मैं चाहती हूँ पूरा वर्ल्ड हमें पहचाने। सिर्फ एशिया ही नहीं, बाकी सारे महाद्वीप में भी नंबर वन नाम तुम्हारे जेठ जी का ही आए। राधिका ने सोफे से उठते हुए कहा, पता नहीं आप लोग क्या कहते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। बस मैं तो आप लोगों का साथ दे सकती हूँ, और आप कौन से फ्यूचर की बात करती हैं, मुझे समझ नहीं आता। आपकी आधी जिंदगी तो बीत चुकी है और जितनी बची है उसको आप इस प्लानिंग प्लॉटिंग में खत्म कर देंगी। माधवी ने हल्के गुस्से में कहा, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली हूँ मैं, और दूसरी बात, अगर मेरे काम नहीं आए तो वो पैसे मेरे बेटे के काम आ जाएंगे, तो बस मेरा साथ देती रहा कर। माधवी की ये बात सुनकर राधिका ने कहा, पर अनंत तो पहले से वेदांत की तरफ है, वो कैसे ऐसे पैसों पर ऐश करेगा जिन पर हमारा हक ही नहीं है। माधवी ने इस बार तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना या नहीं, क्योंकि आज आना ही नहीं है किचन के अंदर, मतलब काम चोरों ने कोई काम भी नहीं किया होगा। रुहान इस वक्त अपने कॉलेज में था, पर उसका ध्यान लेक्चर्स की बजाय सुबह वाले कालूराम में अटका था। रुहान के बगल में बैठे लड़के मोहित ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, कम से कम लेक्चर के वक्त तो अपनी घर वाली मैडम जी को भूलकर यहाँ कॉलेज वाली मैडम जी पर भी थोड़ा ध्यान दे दिया करो, सब स्टूडेंट्स तुम्हें घूर घूर कर देख रहे हैं।
रुहान के लिए काफी एम्बैरेसिंग था, अब उसे वो क्या बताएं कि वो एक बिल्ले से जेलस फील कर रहा है। रुहान ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं मैडम जी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं लग रहा है लेक्चर में, मैं आगे के लेक्चर अटेंड नहीं करूँगा, आज मुझे जल्दी घर जाना है। वो लेक्चर खत्म होने के बाद रुहान वापस कॉलेज से निमानी हाउस के लिए निकल गया।